प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन में अनवरत रूप से चल रहे सत्संग प्रवाह में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार चिंतन हो रहा था। उपनिषद के प्रथम मंत्र पर विचार चिंतन कर रहे थे। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रिध कस्य स्विद्धनम्। यथामति यथागति इस पर हम लोगों ने विगत दिनों में विचार किया है। इस पृथ्वी के ऊपर जो भी चराचर जगत दिखाई पड़ रहा है, एकमात्र ब्रह्म दृष्टि से आच्छादित कर देने योग्य है। नाम रूप का मिथ्यात्व निश्चय करके अस्ते भाति और प्रिय रूप से सर्वत्र उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करने के लिए श्रुति ने आदेश दिया है। और जब सारे नाम रूपात्मक जगत को मिथ्या रूप से निश्चय कर लिए हैं, तब ऐषणा का कोई अर्थ नहीं रहता है। अनात्म पदार्थों की, नाशवान पदार्थों की, या यूं समझो कि जो मायामय है, प्रतीयमान है, वस्तुतः जिनका स्वरूप स्वतंत्र नहीं है, उनके ऐषणा का त्याग करने की बात श्रुति ने कहा। तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रिध कस्य स्विद्धनम्। जो मायामय पदार्थ हैं, मिथ्या पदार्थ हैं, उनकी ग्रिधा मत करो, उनकी आकांक्षा मत करो, इच्छा मत करो। जिसका एक उपलक्षण बताया गया है धन, धन के प्रति व्यक्ति का विशेष आकर्षण होता है, इसलिए श्रुति ने उस चीज को सामने रख करके कहा। कस्य स्विद्धनम्, भला धन किसका है? दो दृष्टि से इसका विचार हुआ था। जो मिथ्या वस्तु होती है वो किसी की भी नहीं होती है। एक सीप में प्रतीयमान जो रजत है वो किसी की नहीं होती। तो जब सब कुछ मिथ्या है तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? व्यवहारिक दृष्टि से भी देखते हैं तो कस्य स्विद्धनम्, भला धन किसका है? आज जिस पर हम अपना स्वत्व समझते हैं, अधिकार मानते हैं, कल किसी और के अधिकार में था, और आज जिस पर हम अधिकार कर रहे हैं आने वाले कल में किसी और के अधिकार में होगा। इस जीवन में जिस पर हम अपना अधिकार मान रहे हैं, हमारे से पहले किसी और ने इस पर अपना अधिकार माना था, और जब यह शरीर नहीं रह जाएगा उसके बाद कोई अन्य पुरुष आकर के इस पर अधिकार कर लेगा। तो ये जो पदार्थ हैं संसार के, प्रवाह रूप की दृष्टि से देखो तो हमारे शरीर से इनकी उम्र ज्यादा है, और कितने लोग इसको मेरा 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 करते करते चले गए। आज तक किसी का हुआ? महात्मा लोग सुनाते हैं कि लक्ष्मी जी को इच्छा हो गई कि चलो मृत्यु लोक का भ्रमण करके आए। वैकुंठ छोड़ करके लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई, जिधर गई जहां गई जिसको देखा सब कहते मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। लक्ष्मी जी असमंजस में पड़ गई, मैं किसकी हूं? लौट करके वैकुंठ में गई, भगवान विष्णु को पूछने लगी, मरते लोक में तो सारे ही लोग मुझे मेरी मेरी करते हैं, और यहां आप कहते हो कि मैं आपकी हूं, पर मैं असमंजस में हूं, हकीकत क्या है? मैं उन दुनिया वालों की हूं कि आपकी ही हूं? भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी आज तक तो तुम मेरे सिवाय और किसी की नहीं हुई, सब लोग मेरी 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 करते मर गए, मर रहे हैं, मरते रहेंगे, आज तक किसी की नहीं हुई। तब कहने वालों को कहने दो, तुम जिसकी हो उसकी ही रहोगी। तो ये माया शक्ति बाबा जिसकी है उसी की रहने वाली है, हम इसके चक्कर में काहे को पड़े। तब भगवती श्रुति बहुत सुंदर बात कहती हैं, कस्य स्विद्धनम, भला धन है किसका जिसको मेरा 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 कर रहे हो। बस इसका परिणाम ये होगा कि मेरापन ही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। जिसको मेरा मेरा किया वो मेरा हुआ तो नहीं, पर मेरेपन की जो मान्यता हो गई तुम्हारे भीतर, ये मान्यता तुम्हें बांध डालेगी। इस मान्यता का त्याग कर दो। आज तक ये मिथ्या पदार्थ किसी के नहीं हुए हैं, और व्यवहारिक दृष्टि से भी देखते हो तो जिस पर अधिकार एकमात्र परमेश्वर का है, तुम उस पर अपना क्या अधिकार कर पाओगे? इसलिए व्यवहार और परमार्थ दोनों ही दृष्टि से देखने पर संसार का कोई भी पदार्थ हमारा न हुआ है, न है और नहीं हो सकता है, परंतु इसके प्रति जो ममत्व है, मेरापन है, यह करके ही बंधन को प्राप्त होते हैं। श्रुति कह रही है सावधान रहो, अपने को असंग बना करके रखो, ये मिथ्या पदार्थ किसी के भी नहीं होते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, अरे तुम अपने आप की रक्षा कर लो मिथ्या पदार्थों की, मायिक पदार्थों की, और व्यवहारिक दृष्टि में जो ईश्वरीय पदार्थ है उनको तुम अपना समझ करके बंधन में मत पड़ो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, अपनेपन का मेरेपन का त्याग करके और तुम अपने को सुरक्षित कर लो, अपनी रक्षा कर लो। पालिय था आत्मानम, अपने आप की रक्षा करो। इस प्रकार से देखो, वेदांत की दृष्टि से जो वास्तविक अर्थ है वो तो आपको बताया, लेकिन यह मंत्र एक व्यवहारिक शिक्षा भी बहुत बड़ी दे रहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसका मालिक कौन है, उस पर अधिकार किसका है? दो प्रकार की सृष्टि बताई जाती है, ईश्वरकृत सृष्टि और जीवकृत सृष्टि। अब विचार करके देखा जाए तो जीवकृत सृष्टि क्या है बताओ? आप कहोगे कि जीवकृत सृष्टि है सारी की सारी बंबई। ये जो बंबई का विलक्षण रूप देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, सब कुछ देख रहे हो, ये जीव ने ही तो बनाया है। चलो मान लीजिए कि जीव ने बनाया है, पर जीव ने अपनी बुद्धि पूर्वक बनाया है कि बिना बुद्धि से बनाया है? जीव ने जो कुछ निर्माण किया है अपने शरीर के माध्यम से किया है कि बिना शरीर से किया है? कहना पड़ेगा कि जिसने भी जो कुछ किया है सबसे पहले अपनी बुद्धि लगाई है, दिमाग लगाया है, और साथ ही साथ समय दिया है, शरीर दिया है, परिश्रम किए, मेहनत की है। तो जीव अपने मेहनत के द्वारा और अपने विचार के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ कर लेता है। आज मोबाइल फोन में सारी दुनिया के साथ में आप अपना संबंध रख लेते हैं, ये भगवान ने ऊपर से बना करके भेजा कि जीव ने बनाया? जीव ने बनाया, पर कौन से जीव ने बनाया? बुद्धिमान ने बनाया कि किसी बुद्धू ने बनाया? प्रति बुद्धिमान की ही तो है। इसका अर्थ आप ये बताइए, जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने कंप्यूटर बनाया है, मोबाइल बनाया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, वायुयान प्लेन बनाया है, बड़े बड़े काम जिस जीव ने अपनी बुद्धि से किया है, अब बताइए वो जिस बुद्धि के द्वारा कुछ कर रहा है उस बुद्धि को कौन से जीव ने बनाया है? वो बुद्धि कौन से जीव की कृति है? बुद्धि को तो जीव ने नहीं बनाया। और जिस शरीर के द्वारा उसने मेहनत करके सब कुछ किया है अपने जीवन में, उसे शरीर का एक भी अंग बता दीजिए जिसको मनुष्य ने बनाया हो। हाथ बनाया, पैर बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाया, सिर बनाया, नाक कान, कौन सी चीज जीव की अपनी बनाई हुई है? माता और पिता भी इस शरीर के निर्माण के प्रति एक माध्यम बनते हैं। वो इसी प्रकार से माध्यम बनते हैं जैसे कोई कुंभकार मिट्टी का घड़ा तैयार कर रहा हो और एक लकड़ी का डंडा उस घड़े को बनाने में एक माध्यम बनता है। एक पानी उस घड़े का निर्माण में, मिट्टी को लिक्विड रूप से बनाने में एक माध्यम बनता है, एक थेपी होती है उसको बनाने में एक माध्यम होती है। अब न वो डंडा, न थेपी, न पानी उस मटके को बना नहीं रहे हैं, वो केवल बनाने के प्रति निमित्त बनते हैं, वो निमित्त कारण मात्र है। ठीक इस प्रकार से यदि हम लोग विचार करके देखते हैं तो हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर के प्रति माता पिता निमित्त बने हैं। माता पिता भी दावा नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारे शरीर का इस प्रकार से हमने निर्माण किया। तो ये शरीर भी ईश्वर कृत है और इसके भीतर में जो एक सॉफ्टवेयर है बुद्धि, वो भी ईश्वर कृत ही तो है। इंसान का अपना क्या है? और फिर वो जीव एक मिथ्या अभिमान कर लेता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मेरे में क्या नहीं है। ये सारा का सारा जो अभिमान है, बस जीव सिर्फ अभिमान ही करता है। जो कुछ किया हुआ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, जिसकी परिभाषा आप लोगों ने श्रवण की है, उसे ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ कृत है। तब एक भक्त साधक को, दूसरा पक्ष बता रहा हूं, यथार्थ अर्थ आपको बताया पहले, बाधात्मक त्याग के द्वारा ब्रह्म दृष्टि करने की बात कही, लेकिन एक भक्त के लिए भी यहां बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि उसको चाहिए कि सर्वत्र जिस किसी को भी देखता है वहां पर ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। कोई विशेषता दिखाई पड़ती है वहां ईश्वर दर्शन करना चाहिए। भगवद गीता के 10वां अध्याय में भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया, कुछ विभूति 9वां अध्याय में, कुछ 7वां अध्याय में वर्णन किया गया। तो जितने विभूतियां भगवान ने बताई और जहां जहां पर भी जीव को किसी प्राणी में, पदार्थ में, किसी भी वस्तु में वैशिष्ट्य मालूम पड़ता है, कोई खासियत दिखाई पड़ती है, तो भगवान कहते हैं वो उस वस्तु की नहीं है, वो मेरी है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को, एक भक्त श्रेणी पुरुष को चाहिए कि जहां कहीं भी उसका मन लगता है, कोई आकर्षण होने लगता है, तो उस वस्तु के प्रति आकर्षण करने की बजाय आप ये देखिए कि इस सुंदर वस्तु की, इस कृति की जो निर्माण निर्मति जिसने किया है वो कितना सुंदर होगा, वो कितना महान होगा। सर्वत्र इस प्रकार से माया शक्ति विशिष्ट ईश्वर का भी दर्शन कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि इस विचित्र जगत को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा जब उसकी कृति इतनी सुंदर है। इस प्रकार से विचार किया जा सकता है। ये एक व्यवहारिक बात मैं आपको निवेदन कर रहा था। कल मैंने कहा था कि ये ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत जो कहा गया है, नाम रूपात्मक जितना भी पदार्थ है, नाम रूप का बाहद करके अर्थात उसका मिथ्यात्व निश्चय करके अस्ति भाति प्रिय रूप से सर्वत्र उस ब्रह्म का ही दर्शन करना चाहिए। ये बात जो इस मंत्र में कही गई है, ये उस ज्ञान निष्ठ पुरुष के द्वारा कही गई है। परंतु उस स्थिति में, उस निष्ठा में स्थित होने में जो असक्षम पुरुष है, उसके लिए अगला मंत्र आ रहा है। ये ईशावास्य उपनिषद ज्ञानी पुरुष के लिए और अधिकारी बनने के लिए, दोनों के लिए बहुत सुंदर निर्देशन दे रहा है। ज्ञानी की स्थिति कैसी होनी चाहिए और उसे ज्ञान की स्थिति को पाने के लिए साधक को साधन रत कैसे होना चाहिए, ये दोनों का वर्णन इस श्रुति में बहुत सुंदर ढंग से हुआ है। जो ज्ञान निष्ठा में असक्षम पुरुष है उसके लिए द्वितीय मंत्र आया है। आइए उस मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं और फिर इसमें प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है ये।
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विशेच्छत गुं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे
जो ज्ञान निष्ठा में असक्षम है उसके लिए कहा कि उसको कर्म करना चाहिए। वो कर्म करें कुर्वन एव इह कर्माणि जिजि विशेत शतम समाह। यह मानी इस मनुष्य जीवन में यह मनुष्य जीवन चूंकि कर्म भूमि है इसलिए यहां कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस मनुष्य जीवन में कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्य अन्यथा इथ अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार से जीवन में कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करने के अतिरिक्त तुम्हारे लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। न अन्यथा इत अस्ति, इस कर्म साधन के अतिरिक्त अलावा दूसरा तुम्हारे लिए कोई साधन नहीं है। किसके लिए? बोले नरे, जो नरत्व अभिमानी हो, अभी शरीर के से मैंपना नहीं हटा है, शरीर में से मेरापन नहीं दूर नहीं हुआ है, जो अपने आप को नर समझ रहे हो, इस संसार में जन्म मरण में नृत्य कर रहे हो, अनेक प्रकार के शरीर धारण कर रहे हो, वासना में पड़े हुए हैं, ऐसे जो नरत्व अभिमानी पुरुष हैं, शरीर में मैं मेरापन का त्याग नहीं हुआ है, उस व्यक्ति को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ये इस मंत्र का आदेश है, मंत्र बोल रहा है। परंतु बहुत गहन विचार है यहां पर। पहली बात तो यह है कि यह कहने की कहां आवश्यकता पड़ गई कि कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कर्म तो स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य कर रहा है। और दूसरी बात कहा कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हैं उनमें से कौन है जो 100 वर्ष से पहले मरने की इच्छा करता हो? कोई करता है? 100 वर्ष से पहले मर जाएं तो मरने की कोई इच्छा करता ही नहीं है। हर व्यक्ति जीने की ही इच्छा करता है। तो जो इच्छा स्वतः ही प्राप्त है उसके लिए शास्त्र को कहने की कहां जरूरत है? शास्त्र तो अज्ञात का ज्ञापक होता है। ये तो ज्ञात है, पहले से ही सिद्ध है कि हर व्यक्ति जीने की ही इच्छा करता है, मरना चाहता ही नहीं है। और उसको जीने के लिए हर व्यक्ति की धारणा है कि कर्म किए बिना कैसे जीवन चलेगा, कैसे जीवन चलेगा। तो कर्म तो स्वभाव से ही कर रहा है, उसके लिए ये प्रेरित करने और कहने की कहां आवश्यकता पड़ गई कि कर्म करते हुए ही, कर्म भी कर ही रहा है और जीने की इच्छा भी निरंतर उसमें बनी हुई ही है, तब श्रुति को यह बात कहने की आवश्यकता क्या थी? बड़ा प्रश्न है। एक एवं तो ही अन्यथा इत अस्ति, और इस प्रकार से कर्म करने के अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, हम भी तो यही सोच रहे हैं कि करेंगे तभी मिलेगा, करेंगे तभी मिलेगा, नहीं करने वाले को कैसे मिलेगा। ये तो हमारी सोच पहले से ही है। इन सब बातों पर विचार करने पर प्रश्न खड़ा होता है कि श्रुति ने फिर जो ज्ञात है, जो सिद्ध है, पहले से ही जो हो रहा है, उसको कहने की कहां आवश्यकता है। अब आप चल करके सत्संग में आ रहे थे और रास्ते में कोई कहेंगे कि आपको रोज सत्संग में जाना चाहिए, अरे हम तो सत्संग में जा रहे हैं, अध्यात्म विद्या भवन में आ ही रहे हैं, हमको कहने की क्या आवश्यकता है? उसको कोई कहा जाए कि जो नहीं आ रहा है, चलो कम से कम रविवार को सत्संग में जाना चाहिए, तब तक तो ठीक था, लेकिन 365 दिन जो आ रहा है उसको कहे कि तुमको जाना चाहिए, तो यह कहना व्यर्थ ही तो हुआ कि नहीं? उसका तात्पर्य क्या निकलेगा? तब श्रुति ने जो ये कहा है किसके लिए कहा है? इसका अर्थ है कि हम कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर रहे हैं, हमारे कर्म करने में कहीं न कहीं कोई कमी है, कोई त्रुटि है, कोई भूल है। जो हम इच्छा कर रहे हैं वो जो हमारी इच्छा है, कोई न कोई उसमें फर्क है, कोई अंतर है। इसलिए यहां पर श्रुति बहुत अच्छी बात बोल रही है। पहली चीज तो यह कहती है कि कर्माणि कुर्वन्नेव, कर्मों को करते हुए ही, कर्म करते हुए ऐसा नहीं बोल रही है, कर्मों को करते हुए श्रुति बोल रही है। ये कर्मनिष्ठ पुरुष के लिए श्रुति बोल रही है, भाई कर तो तुम रहे ही हो। गीता में अज्ञानी पुरुष के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक भी क्षण ऐसा नहीं आता है जिस वक्त व्यक्ति कुछ न कुछ किए बिना रहता हो, कहीं कायिक, कहीं वाचिक, कहीं मानसिक, कर्म उसके निरंतर चलते रहते हैं। तो कर्म तो कर ही रहा है व्यक्ति। अब यहां पर जो कर्मनिष्ठ पुरुष हैं उसके लिए श्रुति ये बात बोल रही है। और दूसरी बात एक और विचार कर लें, फिर मूल पर चलेंगे। पहला जो मंत्र आया था वहां पर कहा मा गृदह ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृदह। गृधा मत करो। कल सुन रहे थे गृधा की व्याख्या, इच्छा मत करो, आकांक्षा मत करो, मा गृधह। पहले मंत्र में श्रुति ने कहा कि कोई आकांक्षा इच्छा मत करो, और जस्ट दूसरे मंत्र में श्रुति बोल रही है जिजि विशेत शतम समाहा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कल कहा कि कोई इच्छा, कोई कामना, कोई आकांक्षा मत करो, और आज वही श्रुति कह रही है कि जीने की इच्छा करो। अब बताइए त्याग और ग्रहण दोनों एक साथ एक व्यक्ति में कैसे होगा? एक ओर कहते हैं कि मत करो, दूसरी ओर कहते हैं करो। बात स्पष्ट है, जो ज्ञाननिष्ठ पुरुष है उसे ज्ञाननिष्ठ पुरुष के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसमें कर्तापन है तो वो ज्ञाननिष्ठ है ही नहीं, वो ज्ञानी है ही नहीं। कर्तापन की भावना होना अलग चीज है और कर्म होना एक दूसरी बात है, चेष्टा होना दूसरी बात है और चेष्टा करना एक अलग चीज होती है। आप बड़े एकाग्र मन से सुन रहे हैं कि नहीं है? और रात्रि को जब आप लोग सो जाते हैं उस समय सुनते हैं, सुनते नहीं है, पर जब सो जाते हैं तब श्वास लेते हो कि नहीं लेते हैं? कौन कौन लेता है? सभी लेते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सोते समय आप श्वास लेते हो कि नींद लेते हो? नींद का आनंद लूट रहे हो कि श्वास ले रहे हो? उस गहरी नींद में आप श्वास ले नहीं रहे, श्वास आ रहा है, श्वास की क्रिया हो रही है, चल रही है, मैं श्वास ले रहा हूं यह भाव नहीं है। आप आनंद लूट रहे हैं, नींद ले रहे हैं, भोजन करते हैं हम लोग, इसमें कोई संदेह नहीं, और जो भोजन करता है उसको पचाता है कि नहीं? पचाता है कि भोजन पचता है? तो फिर कैसे कहते हो कि पचाते हैं? कैसे कहते हो कि श्वास लेते हैं? श्वास लेते नहीं है, श्वास आता है। भोजन पचाते नहीं है, भोजन पचता है। और यदि कोई श्वास दे रहा है, कोई भोजन को पचा रहा है, तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि ये अल्पज्ञ जो जीव है ये तो नहीं करता है। अगर भोजन को पचा रहा है तो अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, उस भोजन को पचाने वाली कोई दिव्य शक्ति है जो कभी सोती ही नहीं है, जिसको नींद नहीं आती। हम लोग तो खर्राटे मार रहे हैं, हम तो नींद ले रहे हैं। तो एक उस संकल्प के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, उस अचिंत्य शक्ति के द्वारा भोजन पचाया जा रहा यह कह सकते हो, या भोजन पच रहा यह कह सकते हो, लेकिन यह नहीं कह सकते कि भोजन को हम पचाते हैं। या तो ईश्वर को मानने वाले कहेंगे भगवान की कृपा से पच रहा है भोजन, या ईश्वर कहता कि मैं पचा रहा हूं, लेकिन जीव पचा नहीं रहा है। अब भोजन की पाचन क्रिया हो रही है, वो कर्म नहीं है। भोजन का पाचन होता है उसमें पुण्य है कि पाप है, क्या हो रहा है? भीतर में भोजन पच गया उसमें पुण्य हुआ कि पाप हुआ? लेकिन जिस भोजन को पकाया, तैयार किया, भोजन के साधन जुटाए, वो भोजन के साधन जुटाने में पुण्य होता है कि पाप होता है? जिस भोजन को हमने किया, हो सकता है अभक्ष्य भक्षण और कोई कर रहा हो, पुण्य होगा कि पाप होगा? और कोई एकादशी का फलाहार कर रहा हो तो विश्वानर भगवान को भोग लगा रहा है, पुण्य हो रहा है। भोजन को करने में पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है, परंतु भोजन को पचाने में न पुण्य है और न पाप है। इसलिए नहीं कि उस भोजन को व्यक्ति स्वयं नहीं पचा रहा है, वो कोई दिव्य शक्ति पचा रही है, भोजन पच रहा है, लेकिन भोजन को करने में वो चूंकि कर्तृत्वपन का अभिमान है कि मैंने किया है। अब जो शास्त्र विहित किया है तो पुण्य का निमित्त होगा वो कर्म, और प्रतिषिद्ध कर्म को किया है तो पाप का निमित्त बनेगा वो कर्म। पुण्य पाप जो अदृष्ट बनते हैं उस कर्म के द्वारा बनते हैं, जिस कर्म में मनुष्य का कर्तापन होता है कि मैंने किया। एक मच्छर को हिट से आपने मार दिया, पुण्य होगा कि पाप होगा? क्या होगा? पाप होगा। रात्रि को आप सोए हुए हैं और नींद में आपने करवट बदली और वो मच्छर देव खून पीने में इतना मस्त हो गया पेट का कि करवट बदली तो भी नहीं उड़ पाया, करवट के साथ ही पेट से दब करके वहीं पर शहीद हो गया। जब प्रातः काल आप उठे तो देखा वो मच्छर देव पूरे चद्दर के ऊपर उसका बलन लगा हुआ, खून चिपके हुए हैं। रात्रि को आपने नींद में मच्छर मार दिया, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि आपको तो पता भी नहीं है, आपके द्वारा भले ही हो गया लेकिन आपने किया नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिसके भीतर में अहंकृत भाव नहीं है कि मैंने किया है, मैंने किया है, उसके शरीर से कुछ भी हो जाए लेकिन उसको पाप लगने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष के लिए बताया गया कि ज्ञानी पुरुष करता नहीं है, ज्ञानी पुरुष से होता है। और वो भी क्या होगा? इसका अर्थ ये नहीं कि फिर ज्ञानी अभक्ष्य भक्षण करने लग जाए, नहीं करने हैं वो भी करने लग जाए, और कहे कि हे आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के और इतने बड़े साधु होकर के, इतने बड़े सिद्ध होकर के और ऐसे कर्म कर रहे हो, ज्ञानी जी कहे मुझे कोई पुण्य पाप नहीं लगता। वो ज्ञानी जी बचने वाले नहीं है, किया नहीं जाता। एक ध्यान देने की बात है कि इस स्थिति पर जहां पर कर्तापन की समाप्ति हो जाती है, ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाती है, वहां वो ज्ञानी सिद्ध पुरुष कर्ता नहीं है, उसके शरीर से कर्म होता है। परंतु प्रायश कोई प्रारब्ध वशात कोई कहीं 1% ऐसा हो जाए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अलग बात है, परंतु ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो होने वाली चेष्टाएं होगी वो चेष्टाएं भी अशास्त्रीय नहीं होगी। ज्ञानी कोई चेष्टा कर नहीं रहा है, कोई कर्म कर नहीं रहा है, हो रहा है, पर वो होने वाली जो चेष्टा है वो भी अशास्त्रीय नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि जो भी चेष्टा करता व्यक्ति स्वभाव वशात कर रहा है, प्रकृति वशात कर रहा है। अब उसे ज्ञानी का स्वभाव, उसकी प्रकृति कैसी है? साधना काल में जो उसने किया है ज्ञान होने के बाद भी वही होगा। साधना काल में एक ज्ञानी पुरुष ने स्वाध्याय किया, सत्संग सुना, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, साधना काल में किया है, उसकी प्रकृति बन गई है स्वाध्याय करने की। अब ज्ञान होने के बाद भी वो स्वाध्याय उससे हो रहा है क्योंकि उसका स्वभाव बना हुआ है। साधना काल में गंगा स्नान किया है, मंदिर दर्शन किए हैं, मूर्ति में भगवान की पूजा की है, साधु ब्राह्मण गऊ की सेवा की है, दीन दुखियों के काम में आया है, लेकिन चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान हुआ और आज उसके लिए न गंगा स्नान की जरूरत रह गई, न गौ सेवा की जरूरत रह गई, न विद्यार्थी अध्ययन करवाने की जरूरत रह गई, न वेद पाठ की आवश्यकता रह गई, न हॉस्पिटल चलाने की जरूरत रह गई, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? कर नहीं रहा है। वो साधना काल का जो एक शास्त्रीय अभ्यास था उसका, वो शास्त्रीय अभ्यास से जीवन भर जब तक शरीर है चलता रहेगा। महापुरुषों के जीवन को देखो, आदि जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज के जीवन को आप देखिए, ज्ञानी पुरुष है और सर्वथा इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं होता है। शास्त्र की इस बात पर आचार्य ने खूब जोर दिया है। अब आचार्य को क्या मानेंगे, ज्ञानी मानेंगे कि साधक मानेंगे, क्या मानेंगे? बड़े भारी सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष है, परंतु फिर भी उनके शरीर से जितना कर्म हुआ है, प्रारब्ध बहुत लंबी नहीं थी, 32 वर्ष पर्यंत शरीर से धरती पर वेदांत का प्रचार किया, सनातन धर्म की रक्षा की, लेकिन 32 वर्ष में आचार्य शंकर ने जो किया है शायद आज 320 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, 10 गुना हो जाए तो भी नहीं किया जा सकता। किया नहीं है, उनकी प्रकृति से हुआ है। बहुत महापुरुषों का जीवन, श्रद्धेय गुरुदेव को देखा, त्यागमूर्ति जी महाराज को, अद्भुत स्थिति थी वो। प्रतिदिन चाहे दिसंबर जनवरी हो और चाहे मई जून हो, गंगा स्नान करना है तो करना ही है। और हरिद्वार में दिसंबर जनवरी गए, बाबा गंगा जी को देख करके दूर से प्रणाम कर लेंगे, हे मैया मान लेना तुम्हारे दर्शन हो गए, हमें पुण्य मिल गया स्नान का। ऐसे भयंकर ठंड, साहस नहीं होता डुबकी लगाने का। प्रयागराज का जो कुंभ था 2002 का, कौन सा था वो पीछे 2001 में ऐसा, तो उस बीच में वो चंद्र ग्रहण आ गया, गुरुजी भी थे, मैं भी था पास में। गुरुजी ने कहा आज चंद्र ग्रहण है और ग्रहण का आदि और अंत दोनों ही स्नान करेंगे। भयंकर ठंड, जनवरी का महीना, प्रयागराज की ठंड, सब जाने लगे तो गुरुजी के एक मोह लगे, भक्त बंबई के हैं आराम परिवार वाले, वो बोले स्वामी जी मैं भी चलूंगा आपके साथ स्नान करूंगा। गुरुजी ने कहा भाई तुम्हारा गुजराती शरीर है, ठंडी सहन नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं महाराज जी, जब आप करोगे तो मैं भी करूंगा स्नान, चलो। एक टाटा सुमो हुआ करती थी, वो बैठे 7-8-9 व्यक्ति बैठ गए, स्नान करने के लिए गए और पहली बार जाकर के वो ग्रहण से पहला स्नान किया, डुबकी लगाई, वापस सब आकर के गाड़ी के अंदर बैठ गए। गुरुजी ने कहा बस डेढ़ घंटे का ग्रहण है और तब तक जप करो बैठ करके, और फिर अंतिम स्नान करके वापस कैंप में चलेंगे। सब ने स्नान किया, गाड़ी में बैठ गए और अपने अपने जपमाला निकाल ली, कोई मौन होकर के बिना माला भी अपना गुरु मंत्र आदि का जाप करने लगे। एकदम गाड़ी में सन्नाटा। वो विनोदी भक्त, मजाकिया भक्त गाड़ी के पीछे बैठा, वो भी जप करने लगा। अब जप में मन नहीं लगा, एकदम शांति, और पीछे धीरे से बोलता, महाराज जी मैंने देखा संगम में हजारों लोग इस भयंकर ठंडी में स्नान कर रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम। मैंने सोचा शायद ये सीताराम सीताराम बोलने से ठंड नहीं लगेगी, तो मैं भी सीताराम 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 बोलने लगा। पर महाराज जी मेरे तो सीताराम भी काम नहीं आया, बड़ी भारी ठंड है, बड़ी भयंकर ठंड है। ऐसी भयंकर ठंडी में भी महाराज श्री जी का नियम था कि गंगा स्नान करना है तो करना ही है। उनका नियम था जितने भी मंदिर हैं 12-13 मंदिर आश्रम के छोटे बड़े मिलाकर के सब, स्नान के बाद प्रत्येक मंदिर में जाना, दर्शन करना, भगवान के विग्रह पर पुष्प चढ़ाना, लौट करके वापस आना कक्ष में, कक्ष में जाकर के गुरुजी की जो व्यक्तिगत पूजा होती थी यद्यपि हम लोग करते थे, महाराज जी प्रणाम करके और फिर नियम से माला जपते थे। अटूट नियम था गुरुजी का। आखिर के दिनों की बात बताऊं आपको, आज प्रसंग जरा कोई बात नहीं, रविवार है, थोड़ा इधर उधर भी हो जाएंगे, कल वापस पटरी पे आ जाएंगे। गुरुजी जब शारीरिक रूप से रुग्णावस्था में थे और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि बहुत लंबे समय 6 महीने से अधिक शरीर रहेगा नहीं, रामकृष्ण मिशन से डॉक्टर आते थे। एक दिन सवेरे सवेरे चेकअप करने के लिए डॉक्टर आए, मैं डॉक्टर साहब को लेकर के गुरुजी के कमरे में गया ऊपर, तो महाराज जी बैठ करके जप कर रहे थे। वो मणि स्नान करवा करके स्वयं स्नान आदि के लिए चला गया और महाराज जी बैठ करके जप करने लगे। तो जप करते करते ही अस्वस्थ अवस्था में था शरीर और महाराज जी को नींद जैसी लग गई, सिर एकदम गर्दन झुक गई और वो जो माला थी वो हाथ में ऐसे लटकी रह गई। स्पष्ट मालूम पड़ रहा था कि महाराज जी को नींद लग गई है, जप छूट गया। थोड़ा इंतजार किया लेकिन लगा कि नींद लगी है, और डॉक्टर को कहीं जाना था थिएटर में ऑपरेशन के लिए, तो मैंने थोड़ा दरवाजा बजाया। दरवाजा बजा तो गुरुजी की एकदम नींद खुली और सामने देखा कि हम लोग। मैंने प्रणाम करके कहा महाराज जी डॉक्टर आए हैं, थोड़ा देखना चाह रहे हैं। इतने में गुरुजी को ध्यान गया और माला उठा करके इशारा करते हैं ठहरो थोड़ा, माला जपनी है। डॉक्टर को कितनी ही जल्दी थी पर गुरुजी की जो छूटी हुई माला थी, जितना नियम था उतनी माला नहीं जप ली, तब तक डॉक्टर को भी इंतजार करना पड़ गया। ये क्या उनका कोई कर्म बाकी था? क्या उन्हें ब्रह्म निष्ठा नहीं थी? सब कुछ था, लेकिन साधना काल का जो किया गया अभ्यास है वो सिद्ध अवस्था में भी चलता रहता है, चलता रहता है। अब वहां करना नहीं पड़ता है, वहां हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। शरीर की ऐसी स्थिति हो गई, कहां है शरीर यह भी पता नहीं था। कमरे में लेटे लेटे महाराज जी कहने लगे थोड़ा बाहर ले चलो, शरीर सर्वथा सक्षम है, बैठे नहीं हो सकते थे। महाराज जी को उठाया, व्हील चेयर के ऊपर बिठाया और रूम से बाहर जो बड़ा बरामदा है उसमें एक राउंड मैंने उससे करवाया। इतने में गुरु जी कहते हैं अच्छा अंदर ले चलो, अंदर ले चलो। ठीक है, अंदर ले गए और व्हील चेयर से उठा करके फिर वापस बिस्तरों पर लेटा दिया। लेटे लेटे ही महाराज जी कहते हैं अच्छा अंदर ले चलो। अब अंदर तो ले आए और कहां अंदर ले चले। मैंने कहा महाराज जी आपको रूम में ले आए हैं, आप लेटे हुए हैं, थोड़े से मौन हुए, फिर कहते हैं अच्छा तो अब अंदर ले चलो। एक धुन लग गई, वो मणि आया सेवक, उसको कहा कि महाराज जी को तुम समझाओ, अंदर तो ले आए। वो भी हां हूं करने लगा, लेकिन महाराज जी को धुन लग गई। राजपुरोहित जी आए, आप जानते हैं बाघ सिंह जी, बोले महाराज जी को एक बर्ती कहीं टिक गई है, सत्संग करें तो वहां से ध्यान हट जाएगा। राजपुरोहित जी ने कुछ मांडुक्य कारिका की कारिकाएं सुनाई महाराज जी को और कहा महाराज जी आपने इसका ऐसे अर्थ किया वैसे अर्थ किया, महाराज जी का एकदम ध्यान उधर चला गया। जीवन भर का अभ्यास बता रहा हूं आपको, करना नहीं पड़ता हो जाता है, ध्यान उधर चला गया। इतने में फिर मुझे कहते हैं राजपुरोहित जी आप महाराज जी से कुछ पूछिए। तब मैंने गुरु जी से एक बात पूछी, उस स्थिति में जब यह भी भान नहीं है कि शरीर कहां पर है, मैंने गुरु जी से कहा कि महाराज जी तमक्रत उपश्यति वीत शोको धातु प्रसादान मेहमान आत्मन, ये पंक्ति कहां की है, कहां लिखा हुआ है तमक्रतोपश्यति वीत शोको। देखो किसी श्लोक को मंत्र को अभ्यास वशात अधूरा छोड़ दिया जाए पूरा करना तो एक आसान बात होती है, लेकिन उस स्थिति में जब यह पता नहीं है कि शरीर कहां है और ये भान रहना कि यह मंत्र वहां पर है, एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पूछा कि यह मंत्र कहां का है, महाराज श्री जी कहने लगे यह कठोपनिषद का मंत्र है। कैसी निष्ठा होगी आप देखिए, कैसा अभ्यास किया होगा जीवन में, कैसी साधना रही होगी। आज यह भी जरूरत नहीं कि यह मंत्र कहां का है याद रखें, सब कुछ कर चुके हैं पा चुके हैं करते हैं, लेकिन फिर भी साधना काल का जो अभ्यास होता है वो अभ्यास निरंतर बना रहता है। ज्ञानी पुरुष को करना नहीं पड़ता, उनसे हो जाता है। परंतु जिनके भीतर से कर्तापन नहीं निकला उनको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जिसके लिए हमारी मां ने कहा है, परम हितेशनी श्रुति भगवती ने कहा है। ये जन्मदात्री शरीर को जन्म देने वाली मां किसी लालच में किसी मोह में आकर के हो सकता कुछ नहीं करने वाली बात भी बोल दे, नहीं करने जैसा भी करवा दे, लेकिन याद रखो ये भगवती श्रुति मां ऐसी है जो वही करवाएगी हमसे जिसमें हमारा कल्याण है, परम हितेशिनी है। मातृ पितृ सहस्रभ्यो वितेशिना, हजारों माता पिताओं से भी ज्यादा हमारा हित करने वाली जो भगवती श्रुति है वो कह रही है ठीक है अभी तुम साधक हो करने की स्थिति में हो, कर्तापन तुम्हारे भीतर है, आओ मैं बताती हूं तुमको क्या करना है। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजि विशेत शतम समाह, करो कर्म करो और कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कर्म करते हुए नहीं, कर्मों को करते हुए, कर्माणि कुर्वन् नेव बहुवचन का प्रयोग किया है। कर्मों को तो कर ही रहा है मनुष्य, अनेक प्रकार के कर्म कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, सब प्रकार के कर्म कर रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए। बोले उनको कहते हैं स्वाभाविक कर्म, वो वासना जनित कर्म है। पर यहां श्रुति जिन कर्मों को करने की बात बोल रही है वो कर्म है जो उस ज्ञान निष्ठा में पहुंचाने के लिए हमारे अंतकरण की स्थिति बना देगा, हमारे अंतकरण को पवित्र कर देगा, निर्बल बना देगा, वो योग्यता प्रदान करेगा कर्म जिस कर्म के करने से चित्त शुद्ध होकर के हम ज्ञान के पात्र बन जाएंगे। और प्रथम मंत्र में जो निष्ठा बताई गई है ईशावास्यम इदम सर्वम, उस निष्ठा को प्राप्त करने की एक स्थिति, एक योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उन विहित कर्मों को करने के लिए भगवती श्रुति बोल रही यहां पर है। कौन है वो विहित कर्म? घड़ी कहते हैं कल बताना, आज नहीं। वो जो विहित कर्म है, जो हमारे अंतकरण को, चित्त को शुद्ध करने का साधन है, उनका बहुत सुंदर विश्लेषण भगवती श्रुति के माध्यम से होना है। उसका विचार हम लोग कल से कर पाएंगे। चित्त शुद्धि के जो साधन भूत हैं, आइए आज घड़ी इनकार कर रही है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।